किसको बोलते हैं जीव? कौन जीव जागेगा? हम लोग सोएंगे तो नहीं, कितने बजे जागेंगे? सोए तो रहते हैं। सबसे सीरियस स्टूडेंट है ना। मैं पिछली बार बोला था कि एक कहावत है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुने ना ये बात से? इसमें कहा गया है कि अगर किसी को हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बनना है, आप में से कोई तीनों बनना चाहते ना? नहीं, सभी बनना चाहते ना? हाँ, क्या तरीका, क्या उपाय है बनने का? कितना आसान है, थोड़ा जल्दी सो जाना और जल्दी जागना। तो फिर काहे को नहीं करते? कितना इतना परेशानी करते हैं इतने बनने के लिए, इतने इजी उपाय क्यों नहीं अपनाते? जस्ट टू स्लीप एर्ली एंड वेक अप एर्ली, दैट्स इट। पता नहीं क्या क्या करते हैं, कितने पैसा खर्चा करते हैं, कितने क्या क्या करते हैं हेल्दी वेल्दी वाइज बनने के लिए। तो ये बताते हैं कि कितना आसान है ना। कितने बजे कल सोए थे?
कल 11 बजे।
क्यों रे? 11 क्यों बज गया? क्लास तो हमारा 8:30 बजे खत्म हुआ था। प्रसाद कितने बजे खत्म हो गया? 9:30 बजे हुआ होगा। फिर क्या कर रहे थे? आपका था क्लीन क्या?
नहीं नहीं, सब मिलकिंग करते।
तो सभी सड़े कर रहे से कल?
नहीं नहीं, ये पहले सो गए थे।
तो आप क्यों फिर रह गया? तो आपका सफाई के सब आपका था क्या?
नहीं नहीं,
और
ऐसे ही,
और बाकी कोई साफ नहीं की, केवल आपको करना पड़ा? वो प्रभु जी, आप प्रभु जी दोनों के विकास हो गए हैं। चलो अच्छा, इतने भक्त लोग खाए, उनका सेवा किया तो अच्छा किया है ना। तो एक सुस्थ व्यक्ति के लिए हमारा स्वास्थ्य विज्ञान कहता है कि 6 घंटा सोना सफिशेंट है। आप लोग सब सुस्थ व्यक्ति हैं, ये तो जवान है आप लोग से। 6 घंटा मैक्सिमम, 6 घंटा से ज़्यादा सोना मतलब आलसी है, आलस्य है ना, लेजीनेस। उससे ज़्यादा सोएंगे तो क्रेजीनेस है ना। तो अगर 11 बजे भी सोए, 6 घंटा कितने बजे? 5 बजे। कितने बजे जागे?
6 बजे।
तो 1 घंटा आलसी के ना। कम से कम 5 बजे तो जग जाना चाहिए है ना। तो ऐसा करेंगे तब तो जाकर होंगे ना। कल मुझे कोई पूछ रहा था, धीरे धीरे सुबह उठना ही सबसे परेशान है। सुबह उठना नहीं चाहेंगे तो कैसे अच्छे बनेंगे तुम्हें? आप तो मनुष्य हैं, ये देखो चिड़िया है ना, चिड़िया पशु पक्षी जो हैं वो भी टाइम पर जग जाते हैं। अरे वो तो हमको जगाते हैं,
सुबह जग
जाते ना। और हम मनुष्य होकर इतने नालायक है, पड़े रहते हैं उठते हैं, तो कैसे हमारा कल्याण होगा? तो इसलिए ठाकुर जी ने आकर जगाते हैं। मेरे मूर्ख, तो आकर सोता ही रहता है रात में, तो ऐसे डेड बॉडी होकर सोता हमारा पड़ा रहता है। दिन में ही जागृत न सोया रहता है ना। सोना का अर्थ है जो जगा नहीं है। सोने किसी को बोलते हैं? जो सोया हुआ है वो, जो जगा नहीं है, इसका अर्थ है सोना। जगना किसको बोलते हैं? जो जागृत है। फंस गए क्या? जो सोया हुआ नहीं। नहीं, क्या चीज है जिसको बोलने से जागृत है, नहीं तो सोया हुआ? सोने में क्या करते हैं अपनों? सब ठप, हाथ पर इंद्रियां सब खाप कुछ करते नहीं, पड़े रहते हैं बस, है ना। जगने में सब काम चलता है, सब एक्टिव हो जाता है, इंद्रियां एक्टिव होता है, कुछ करते हैं, कुछ काम करते हैं। जो काम करते हैं किस लिए काम करते हैं? शरीर तो है ही, शरीर के लिए क्या करेंगे? शरीर को पालन पोषण के लिए खाएंगे पिएंगे थोड़ा आराम मिलेगा, इसलिए करते हैं, है ना? भोजन साधन जुटाने के लिए, इसको करने के लिए। तो ये जो काम करने का स्थिति, जो जागृत स्थिति, वो सारे इंद्रिया जो एक्टिव हो जाए, जो काम करे वास्तविक ज्ञान में आ करके, तब उसको जागृत स्थिति बोला जाएगा। जब वह नहीं करता है तो सोया हुआ। तो अभी हम लोग जो करते हैं वो भी सोने के लिए ही करते हैं। किस लिए खाते हैं? खा पी कर फिर सो जाएंगे। आप कल किए ना, कल खाया पिया सफाई के फिर सो जाए। जो सोने के लिए ही करते हैं वो भी सोना ही है। आप बेड बिछाते हैं, कंबल ओढ़ते, तो सो ही रहा, क्या बोलेंगे आपने? सो ही रहा। जब आप मच्छरदानी टांग रहे हैं, बेड बिछा रहे हैं, बेडशीट झाड़ के डालें, तब बोले व्हाट आर यू डूइंग? आई एम स्लीपिंग, यही बोलेंगे ना। तो हम दिन भर भी जो करते हैं किसी लिए करते हैं? सोने के लिए। तो हमें सोते ही रहते हैं। जगने के बाद जो क्रिया, जो मुद्रा, जो समझ होना चाहिए वो किसी को नहीं आता। तो इसलिए भगवान कहते हैं रात को तो डेड बॉडी की तरह सोया, ये लिविंग बॉडी की तरह सोया, मतलब थोड़ा एक्टिव होकर भी सोया, सोने के लिए प्रयास कर। सोया था, उठ कर फिर सोने के लिए तैयारी कर। तो 24 आवर्स सोता ही रहता है। तो इसलिए जागो। गौरांग महाप्रभु बोलते हैं कि रे जी जागो। जागृत अवस्था क्या है आगे बताएंगे। जग करके जीव जागो गौरचंद्र बोले कतो निद्रा जाओ तुम, कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रखोगे। ये जो सोना है निद्रा, कितना दर तक सोएगा? पिशाची जानते ना किसको कहते हैं? जानते ना पिशाची? आपके भाषा में क्या करते हैं उसको? दाइन, चुड़ैल, चुड़ैल ना, चुड़ैल। तो चुड़ैल की गोद में सोए हो, है ना? तो चुड़ैल की गोद से कितना देर तक सोएगा भाई? उठो तो सही, उनको देखने से भाग कर जाओ वहां से। माया पिशाची के गोद में कब तक सोएगा? चलो, माया किसको कहते हैं? माया पिशाची कौन है? नहीं, निद्रा देवी तो सिलपट कर देता है, कुछ काम नहीं रहता, माया फाया कुछ पता नहीं चलता। दिन में माया पिशाची ग्रास करता है, रात को तो निर्माया पिशाची। माया शब्द का अर्थ है मां, मतलब संस्कृत भाषा है मां मतलब नहीं, यह मतलब है दिस। मां मतलब नट और यह मतलब दिस, तो मतलब नट दिस नहीं है। माया का शब्द का अर्थ है नहीं। हम जब जग जाते हैं, जो काम सब करते हैं, जिसके लिए करते हैं, सब नहीं है, सब झूठे करते हैं। आप बोलते ना मेरे लिए करता हूं, तो आप तो है ही नहीं, आपके शरीर नहीं है। अभी जो कार्य सब करते हैं ये सारे माया की कृत्य करते हैं। इतने प्रकार के दिन के समय में जो कमाना दमाना, जो फंसाना फंसना, ये जितने से कार्य जो लगे हैं वो सारे सत्यता नहीं, किसी सब फसल माया के चंगुल में पड़े।
मंगल आरती करते हैं ये नहीं,
मंगल आरती करते तो जगने का प्रयास, मंगल आरती करने के बाद फिर फंस जाते हैं, है ना? उसी समय तक जगे रहते। जगने का कर्तव्य ये है कि जागृत का अवस्था है कि आप जो है और जिसके लिए है वही काम जब तक करेंगे तब जगना माना जाएगा जागृत है। जो उसको नहीं करते दूसरा करते हैं तो माया में फंसा हुआ, उस माया में फंसा हुआ छोटा काम होता है। तो माया पिशाची का गोद में ज्यादा समय ना शुरू होकर जगने के लिए ठाकुर जी कहते हैं। फिर क्या कहते हैं?
इस जगत में
भजीव बोलिया ऐसी संसार भीतर ही है ना। ये बात इसलिए कहते हैं कि हम जितने हैं सभी ने जब जन्म लेने से पहले जो हमारा वेलकमिंग सेरेमनी हो रहा था ना, कैसे होता है मालूम है? अरे वेलकमिंग से घंटे दो घंटा नहीं, नौ नौ महीना तक होता है। जब हम दुनिया में आए तो हम रिसीव किया गया, नौ महीना अंदर एक जगह में रखा गया, कहाँ रखा गया? गर्भवास में। कितनी मजा है, उल्टी टांग होकर के मल मूत्र के बोरे के अंदर कीड़े काटते होंगे, किसी हस टस मस नहीं हिल नहीं पाएंगे, बड़े असहाय, कितने दयनीय स्थिति। इसी में पढ़े रहे, हमारा ओपनिंग ऐसा हुआ और बोलते हैं हमें सुख भोगने के लिए लज्जा हमारे तरफ। अरे एक दो दिन में नौ नौ महीना तक पूरी तरह से दुखी होकर के असहावस्था से नहीं आया, दिस इज आवर ओपनिंग। अब बोलते हैं तो इस अवस्था में इतने दुख मिलता है। माता जी जब कुछ कड़वा आचार खाती है ना, उनको तो जीभा में टेस्ट लगता है, हम कुछ सीधा खींची जो नरम नरम सब स्किन होता है उसमें सीधा जाकर लगता है, बिल्कुल जलन होता है, आप सेंशन हो जाते हैं यंत्रणा के मारे, लेकिन किसको पता चलता है? कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ सुन भी नहीं सकते, नोबडी विल हेल्प यू। तो इतने दारुण यंत्रणा होता है। आप तृतीय स्कंद भागवत में पढ़ेंगे, भगवान कपिल देव कहते हैं जीव का जो दशा होता है, कैसे कैसे गर्भावस्था से ग्रोथ करके बढ़ता है, जब वो चेतना शक्ति उसको मिल जाता है इतने उनको कष्ट महसूस होता है, इतने कष्ट होता है, यंत्रणा होता है। तो उनको जैसे कहते हैं ना, सुख में सुमिरन सब करे ना, दुख में सुमिरन सब करे, है ना, दुख आ तो भगवान में याद आते हैं। तो इतने दुख होता है, इतने दुख आता है, बोलते सौ जन्म का पहले का याद आ जाता है, तीसरे जन्म में ये काम किया था, कान पकड़ता है सार, एक्सक्यूज मी प्लीज और नहीं करो, उसके पीछे वो भी किया था, नहीं वो भी नहीं करूँगा, उसके पीछे वो भी किया था, सारे एक एक बार जितने बदमाशी किए थे, जितने गलती किए थे, तो एक एक कर कसम खाते हैं, क्षमा मांगते हैं, भूल मांगते हैं, और नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, इस बार प्रभु जी मुझे निकाल दिए, यहाँ से निकाल दीजिए, प्लीज आपके ही भजन करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, नाक रगड़ कर कान पकड़ कर बोलता हूँ, केवल आपको भजन करूंगा, ऐसे बहुत कसम खा ली। लगभग दो महीना तक एवरी डे एंड नाइट हम ठाकुर जी को प्रणाम करके ही प्रार्थना करते थे। सातवां महीना से नौ महीना तक दो महीना का यही काम होता है घर में। तब जो इतने प्रार्थना करते भगवान बोलते चलो बेटा बहुत बनता है, तो इतने तमीज कर रहा है भजन करने के लिए, निकाल दो उसको। तो भगवान ने एक प्रसूति वायु, एक प्रकार के वायु होता है अंदर में, दस वायु में वायु में प्रेस करते हैं निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर फिर भूल जाते हैं कमीज। इतने सारे दो महीना तक कसम खाए थे, आकर बोलते हैं हम भोगेंगे, हम भजेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रहली तुम्हें अविद्या, भूल गया आकर फंस गया अविद्या। इसलिए अविद्या से फंसो, थोड़ा समझो, इसलिए आया, क्या तेरा लक्ष्य है? केवल कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज में फोर्थ ईयर का डिग्री लेना ही लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है ना, तो उसको सोचो। तो क्या लक्ष्य है? तो भगवान कहते हैं भजन करने के लिए प्रवेश करके आया था, यही तेरा लक्ष्य। भजी वो बोलिया ऐसी संसार भीतर, संसार में आकर भजन करूंगा तो फिर दोबारा मैं ये कष्ट नहीं मुझे मिलेगा, सदा के लिए कष्ट से बच जाऊंगा, नहीं तो बार 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 इसे फंसूंगा, इसलिए मैं भजन करने के लिए आपसे प्रमिश करके आया था, भूल गया आकर। तो ये जो माया के प्रभाव से हम भूल गए और जो करना लायक उसको नहीं करके, जो नहीं करना चाहिए उसको करते हैं, तो इसी को भगवान बोल रहे तेरे पिछड़ावस्था है, तो बेचारा भूल चुका, समझ नहीं आ रहा इसे कर रहा, तो फिर समझ लाने के लिए तुम मेडिसिन में लेकर आया, दवाई लेकर आया हूँ, तेरा पागलपन ठीक हो जाए, तेरा मेंटल इम्बेलेंस ठीक हो जाए, दिमाग ठीक हो जाएगा, ठिकाना लग जाए। क्या दवाई है? एनी ची औषधि माया नासी वार लागे, तो माया को नाश करने के लिए मैं मेडिसिन लेकर आया हूँ, और मेडिसिन क्या है मेरे से ले लो, हरि नाम महामंत्र लय। हरिनाम महामंत्र ही कर्म निषेध मंत्र मंत्र मन को तो दिमाग को ठीक करने के लिए यही मेडिसिन है इसको ले लो इस हरिनाम मंत्र बताओ और इस हरिनाम मंत्र के द्वारा तेरा माया नाश हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आपके चरण में भीख मांग करके मैं हरिनाम मंत्र देना चाहता हूँ, मुझे नाम लिखा दीजिए, मुझे नाम दीजिए, इससे मेरा जीवन का कल्याण है, यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन नाम प्राप्त करने के बाद भी नाम लेने के लिए हमारा अंदर योग्यता भी तो होना चाहिए, है ना? नाम तो सबको पता चल गया, देश में आए सबको पता चल गया, फ्री में मिलता है नाम, हरे कृष्ण नाम तो सबको बता दिया गया, लेकिन इसको जपने के लिए उसको कीर्तन करने के लिए हमारा इच्छा नहीं होता, बाकी काम करने के लिए सब इच्छा होता, इसके लिए नहीं इच्छा होता। क्यों इच्छा नहीं होता? जैसे मान लो जपने के नाम बताते हैं तो बहुत सारे एक्सक्यूज मिलता है, बहुत सारे बाकी काम करो तो होता है, इसके लिए मर गए, है ना? अगर अभी कोई इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट निकल रहा है, वो अभी सुबह सुबह उसका बुलेटिन आएगा तो अब नींद छूट जाएगा, लेकिन जपन सुबह क्लास होगा इसलिए उठे मंगलाते हैं, है ना? कई प्रकार है, इसके लिए मन लगता है, किसी मन नहीं लगता, क्यों? क्योंकि माया हमको सर से नाक तक पूरे ग्रास करके बैठा है, और अब जो करेंगे माया को बहुत कड़वा फन लगेगा, भागना पड़ेगा उसको छोड़कर, माया छोड़कर नहीं जाना चाहता है, माया आपको अपने कब्जे में गोद में लेकर बैठा है, उसे छोड़ना नहीं चाहती है, तो आप अब जब करेंगे तो माया को छोड़ कर जाना पड़ेगा, तो इसीलिए नहीं छोड़ना चाहते, तो बोलते बेटा मत जाओ यार, सो जाओ, क्यों ये सब कर रहा है यार, ये काम है, ये करना है, ये करना है, देखो फोन आ रहा है, ये क्या है कृष्ण कर रहा है, तो आपको भुलाने लगेगी, लेकिन आप अगर उनके थापड़ से भूल गए, लेकिन अगर आपके पुरुष से कमिटमेंट करके अगर करने लगे तो माया तो फिर छटपट आकर भाग जाएगी। तो इसलिए ये माया रूपी साँची तो हमको गली नहीं देती, और हमारा अंदर जो पाप बैठे हुए हैं वो पाप माया के साथी, माया के अपज है सब, वो भी नहीं करने देते। तो निष्पाप होने के लिए क्या उपाय है? हरि नाम, हरि नाम ही पाप से शून्य करेगा, आपको पवित्र करेगा। तो हर प्रकार से सर्वौषधि, सारे प्रकार की बीमार के औषधि है ये हरि नाम, इसको लेना पड़ेगा। तो हम अभी सुबह सुबह शिक्षाष्टक मंगाते हैं, शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु बोले चित्त रूपी दर्पण को मार्जन साफ करने के लिए हरि नाम ही महा औषधि है, और विद्यावधु जीवनम, विद्यारूपी वधु के जीवन है, तो फिर इसको हमेशा करना, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण नाम कीर्तन के सबसे जय हो, इतनी महा गुणकारी है। लेकिन उसको कैसे करें, करने के लिए विधि बताए चार, बोले चार काम करने से परहेज फिर जाकर नाम कर पाएंगे। चार परहेज क्या जानते हैं? क्या है? हाँ, सुबह उठना, क्या और ये तो नियम है ही है, लेकिन ठाकुर जी जब वो कैंडिडेट की बात करते हैं वो उसे वही नहीं करते, ये हम लोग को बात करते हैं, हम लोग तो छोड़ चुके ना नियम, इसको छोड़ने के बाद तो फिर इसकन में आकर फिर नाम करने के लिए भी और कुछ क्वालिफिकेशन जाएगी, ये सर क्या समझा रहे हैं, क्या दाम धाम वास, धाम वास कोटे में रहकर नहीं कर सकते मैं, अच्छा भी होना तो चाहिए, अच्छा होकर करके आते हैं आगे सो जाते हैं, आप में से कौन सुबह आज उठाता हो प्रभु जी कहाँ गए, ये बोल प्रभु जी, ओ प्रभु जी कभी उठते हैं, देखता हूँ 4 बजे से उठकर आगे ला कर ही बैठ कर पूजा, प्रयास करते रहते हैं, विचार फिर बोल जाते। क्यों? वो चार क्वालिटी महाप्रभु ने बताए शिक्षाष्टकम के साथ, तीसरा ना लाइन में किसमें आता है ना, यस, नीचता, सहिष्णुता, अमानिता और मानदता, ये चार गुण याद रखे। क्या क्या है? नीचता, सहिष्णुता, अमानिता और मानदता। सबसे पहले आता है, सबसे प्रथम गुण जो बोलते हैं कि महाप्रभु ये चार गुण जो करता है, ये चार ही गुणे गुणी है करह कीर्तन। ये चार गुण जिसके पास नहीं, कीर्तन नहीं, सदा कीर्तन तभी कर सकते। मान रूपी सुनी चेना तरुण रूपी सही सुना अमान नहीं मान देना, कीर्तन ये सदा हरि, सदा हरि कीर्तन तभी कर पाएगा जब ये करेगा कोर्स पूरा। ये जो चार कोर्स है, इसमें सबसे पहले कोर्स क्या है? नीचता। निष्ठा समझते क्या होता है? निष्ठा मतलब गिरा, तो यहाँ बैठे कैसे गिर गया, कैसे नीचे जाके कूद पड़ेगा, अपना निकृष्ट मानना, और कोई बहुत बढ़िया पंडित है, अपना निकृष्ट मानना, और कोई नीचता मतलब आप कुछ बताएंगे, नीच बनना चाहते ना, नहीं इसलिए नहीं अब बनना नहीं चाहते, नीच क्या जानते ही नहीं, अपने आपको तिनके बना देना, एक उदाहरण मुझे बताए, इसे बोलने से एक उदाहरण बताया कि ये नीच है। नीच शब्द का अर्थ के लिए एक उदाहरण को बता सकता है, एग्जाम्पल वो धागा भी नहीं झुक जाता, धागा तो धागा तो जमे होते रहते हो, जो ऊपर में रहता है धागा वो भी झुक जाता है। वृक्ष है, वृक्ष झुक जाता है, अब ये पेड़ इधर है, अब जाओ तो झुक जाएगा। झुकना मतलब क्या है? झुक जाना, पेड़ जो खड़ा है कैसे झुक जाएगा? महाप्रभु ने उदाहरण दिए तीर्ण का, उदाहरण नहीं उपमा दी, इसको उपमा कहते हैं, उपमा और उदाहरण से डिफरेंस है ना, उसके साथ तुलना की तृण के साथ और कहे तृणात् अपि तृण से भी ज्यादा नीच होना चाहिए। अब तृण ही तो नहीं बन सकते, तृण से ज्यादा किसे बनेंगे? तो भगवान कहे क्यों करे, अगर हम तृण भी नहीं बन सकते हैं तो हाउ कैन वी बिकम मोर देन तृण, है ना। तृण को ये उदाहरण दिए हैं, ये तुलना दिए हैं कि वो हमेशा नीचे रहता है, हमेशा नीचे रहता है, बाकी जितने पशु पक्षी जानवर सब उसका ऊपर चल के जाते हैं, है ना। एक चींटी भी जाएगा वो भी पैर उसका ऊपर रख कर जाएगा, उसका नीचे घास रहे, है ना। तो जो सबका नीचे रहने के लिए तैयार है उसको कहते हैं नीच। नीचे नीचा शब्द से नीच शब्द आया, नीचा जानते ना, नीचा माने सबसे नीचे, ऊपर नहीं, जो कभी ऊपर उठने के लिए प्रयास नहीं किया, जो कभी ऊपर जाने के लिए प्रयास नहीं किया, हमेशा नीचे रहना चाहे तो नीच, ऐसा समझ में। और नीच सबसे रहने वाले में, सबसे जमीन को पकड़ कर नीच में रहता है कौन? घास, तृण। उसका ऊपर कोई कीट पतंग कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब जाएंगे, वो सबका पैर के नीचे आएगा, इसलिए उसको नीच कहा। लेकिन इसका फायदा क्या होता, हमेशा नीचे रहता है बेचारा, उठ नहीं सकता, उसको नीचे रहना ही है, तो नीचे ही है। लेकिन उससे ज्यादा नीचे आप लोग को बनने के लिए कहा गया, क्योंकि आप लोग तो 5-5.5 फुट है ऊंचा है, ये दो आधा इंच का वाला तो नहीं है, आप तो 5 फुट वाले हैं। 5 फुट वाले हाइट भी अगर नीचे रहे तो उसको उससे ज्यादा ना पीस नीचे, आप इतने झुक कर आप इतने बड़े लंबा चौड़ा होकर भी इतने नीचे हो गए। जो नीच व्यक्ति, जो नीच होना चाहता है, उसका अंदर एक लक्षण होगा कि हर किसी को सम्मान देगा, कोई भी किसी को गाली दे दिया डांट दे दिया सुनने के लिए तैयार, क्योंकि सबसे छोटा जो आपसे अभी नया आया है तो उसके ऊपर सब चढ़ जाएंगे, नहीं उसका ऊपर हकम नहीं करेंगे। अभी आपने जो 10-11 हैं, अभी कल जो एंट्री किया उसको तो बेचारा जानता नहीं कहाँ पेशाब करे, कहाँ खड़ा रहे, कहाँ बैठे, कहाँ उठे, ए इधर नहीं इधर प्रभु जी, ए इधर नहीं उधर प्रभु जी, ए सब भी तो अपना ऑर्डर चलाएंगे उसको, वो बेचारा नया है करेगा क्या, सबको सहना पड़ेगा, है ना। तो हमेशा ऐसे न्यू कमर होकर रहना, ये कहते हैं, तब नीच की अवस्था है। थोड़ा सा सीनियर हो गए 1 महीना का 2 महीना का तब तब लगा कमर से बना तो ही गड़बड़ी है। हमेशा इसी स्थिति में रहना, जब इस स्थिति में रहेगा तो आपको कोई डांटेगा गाली देगा आपको बस कुछ जवाब है, क्योंकि मैं तो नया हूं, वो जानता ही नहीं, सहन करना पड़ेगा। जब तक नीच नहीं है तब सहन नहीं कर सकते, आपने सहनशीलता गुण तभी आएगा जब आप अपने आप को सबसे छोटे मानेंगे। जब तक आप सबसे अपने आप को छोटे नहीं मानेंगे तब तक सहन कैसे करेंगे, और जब तक अपने आप को छोटे नहीं मानेंगे तो दूसरे को सम्मान भी नहीं दे सकते, कह देंगे मैं बड़ा मुझे सम्मान वो मुझे करे मैं तुम करे। तो जो अपने आप को सबसे छोटा सबसे नीच सबसे गिरा हुआ सबसे निकृष्ट जिसे प्रभुने वाला मानता है, बाकी सबको उत्कृष्ट मानता है, तो वही सभी को सम्मान देगा, सारे बात को सहन करेगा और सारे का सेवा करने के लिए तैयार होता। मैं ही सबसे छोटा हूँ, मैं सबको करना है, बाकी सब मेरे से बड़े हैं, मैं ही सबका सेवा करूँगा, है ना। तो इसमें ये पता चलता है सेवा करने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट गुण है क्वालिटी, वो क्या है, नीच का। जब ये नहीं होगा तो सेवा नहीं कर सकते, सेवा ले सकते हैं सेवा कर नहीं सकते, सेवा करने के लिए वो छोटा होना चाहिए, नीच है ना। और नीच बनने के लिए आपको सब कुछ सुनना पड़ेगा और कुछ बोल नहीं सकते, है ना। एक चाणक्य पंडित ने एक बात कहते थे, चाणक्य पंडित जी जानते ना सर, बहुत बड़े पंडित थे, उन्होंने एक बात कहते हैं उनकी बात में कि अगर अरे मनुष्य अगर आप आपके जीवन में एक महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ एक ही प्रैक्टिस करो, एक चीज को प्रैक्टिस करो, एक गुण अपनाने का प्रयास करो, जस्ट वन, तो वह महान बन जाए, संसार में महान बना जाए, बहुत जल्दी महान बन जाए। आप सब बनना चाहते हैं, एक गुण, ज्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट वन, उसको कीजिए, बहुत जल्दी आप बहुत बड़े महापुरुष बन जाएंगे, करेंगे। वो बोल रहे थे कि एक ही गुण क्या है, ना कभी भी किसी परिस्थिति में किसी का बुराई ना करना, क्या कभी किसी परिस्थिति में किसी को बुरा ना मान, बुरा ना कहना, बुरा ना मान, बुराई ना करना उसको, ये ऐसा है ऐसा है, इसे कुछ नहीं करना, कभी नहीं करना, केवल एक ही गुण ये आप करके देखिए। कितने फास्ट आप महान बन जाएंगे, सारे दुनिया आपको पूछने लगे जस्ट वन। यहाँ वो तो यहां तक कहे हैं उन्नति में, बोलते हैं कि मैं मानता हूं ये बड़ी आसान गुण है लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, कोई करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमारा आदत इतने बिगड़ा हुआ है। आज सुबह कसम खाएंगे मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा, हर पांच मिनट के बाद बड़बड़ बड़ो किस बोलती करूंगा इसको बोल चढ़ जाएंगे तुम्हें फिर, अरे तू कसम खाते किसी बोलूंगा नहीं चल रहा के बोले, जब इसे पुशिंग आता है किसके ऊपर बोलने के लिए थोड़ा गाली देने के लिए अगर नहीं तो जाता है तो आपने हाथ से मुंह के अंदर डालकर जीभा को पकड़ लो ज्यादा से ज्यादा एक आधा मिनट, फिर उसके बाद ठंडा फिर नहीं बोलेगा, वही आधा मिनट में खत्म कर देगा सारे सत्यानाश कर देगा सारे रिलेशन को जो इतने दिन से बंधुत्व फ्रेंडशिप किया था आधा मिनट में चुपट कर देगा, है ना। तो केवल आधा मिनट का सहन कर लो, पकड़ लो ना, बोलो मत, मन में आया मन में रखो, डोंट डू प्रैक्टिकल, है ना, एक्शन में मत करो तब हो जाएंगे। तो इसी को प्रैक्टिस करना चाहिए, किसी भी समय में किसी परिस्थिति में किसी का भी बुरा ना करिए, बुराई मत देखिए, बुराई मत बोलिए, बुराई ना करिए। अगर यही एक ही गुण का हम प्रयास करेंगे करने के लिए तो देखो अपने एवरी डे कितने आप ग्रेट ग्रेट पर जा जस्ट बाई डूइंग दिस। दो प्रकार के मक्खी देखे जाते हैं संसार में, एक मक्खी है जो आप देखते हैं इधर भी उड़ते होंगे सब, इधर जहाँ फेंके होंगे ना कचड़ा डस्टबिन में यहाँ जाके बैठे होंगे हमेशा, जहाँ अहंकार गंदगी कचड़ा वहीं बैठते हैं मक्खी मन 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 घूमते रहते हैं, सब देखे ना फ्लाइस इसको, उनका काम क्या है गंदगी केवल बैठते थोड़ी ऐसा यहीं बैठे संतुष्ट ठीक नहीं, वहां बैठ कर आके जो अच्छा खाना बना वहां भी अगर बैठे उसे खराब करेंगे, खराब तो है हमेशा खराब जब रहेंगे उस खराब चीज को ला करके अच्छे को भी खराब करेंगे। अरे भाई तू खराब में रहो यही रहो भाई संतुष्ट ना, वहां से उड़कर आकर गंदगी मंदगी से हाथ लेकर फिर आपके भोजन में बैठेंगे और कहीं ना सीधा आप थाली लगाए गरम गरम थोड़ा सा हवा थोड़ा थन्ना होता बैठ गए कंटामिनेट करेंगे उसको, हमेशा गंदगी पसंद करते हैं ढूंढते रहेंगे कहां गंदगी हुआ तो वहीं जाएंगे, है ना, जहां गंदगी है वहीं जाएंगे और गंदगी को इकट्ठा करके लौटो फिर जाकर जो अच्छा है उसको साफ करें। हमेशा उनके जीवन में ओनली एक ही प्रोजेक्ट होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट क्या है गंदगी में ढूंढना उसी में रहना और आकर दूसरे को गंदगी करना उनका और पूरा लाइफ में दूसरा कोई प्रोजेक्ट होता है नहीं, एक ही प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं टू द एंड ऑफ लाइफ। दूसरी एक मक्खी एक प्रकार और मक्खी होते हैं जानते हैं इसे मधुमक्खी कहते हैं, वो भी एक मक्खी तो है लेकिन वो कभी गंदगी में जाते हैं, खिले हुए सुगंधी फूल के पास जाते हैं, जा करके फूल के ऊपर बैठते हैं, आप लोग भी हम भेजेंगे थोड़ा जाओ फूल लेकर आओ, फूल के पास देखेंगे इतना फूल है आप जा करके फूल को तोड़ देंगे, वो जाता फूल को तोड़ता तोड़ता नहीं मरोड़ता नहीं एक पेटाल को भी इधर उधर कुछ नहीं करता आज इट इज रहता, कोई कांटेली फूल है कोई पीला है कोई लाल है कोई कैसे है कोई कैसा, हर एक प्रकार फूल के पास जाता है फूल के ऊपर बैठता है, कुछ भी आड़ता तोड़ता मोड़ता नहीं बैठ करके अपने सीरीज डालता है और उसमें जो निकालता है उनका रस आप लोग सब टेस्ट किए होंगे, क्या बोलते हैं उसको शहद, जिसको खाने से आपका शहद बन जाता है सब, है ना आपका शहद कैसा है बोलते हैं ना, वो शहद निकालता है कितना मधुर मधुर टेस्ट है उसका। अगर आप जैसे साइंटिस्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बोला जाए तुम जाओ एक फूल से थोड़ा ला कर आओ तो रस वो छोटा सा मक्खी निकाल लेते आप थोड़ा निकाल कर लाओ, आप बोलेंगे आप जाता हूँ एक फूल से हम 10-20 फूल ले लेंगे, पहले तो तोड़ेंगे पेड़ को शाखा को भी तोड़ डालेंगे, क्योंकि नीचे नहीं है ना, पहले पेड़ को तोड़ेंगे, तोड़ के शाखा को तोड़ेंगे, उनको उनके से फूल को तोड़ कर लाएंगे, लाकर फिर क्या करेंगे, उसको ग्राइंडिंग कर डालेंगे, पीस पास करके निचोड़ेंगे, खाली थोड़ी निचोड़ेगा, पहले ग्राइंड करना पड़ेगा ना, पीसेंगे उसको, पीस करके फिर निचोड़ेंगे, निचोड़ के जो जूस निकालेंगे उसको टेस्ट करो कैसा लगेगा। हम इतने क्वालिफाइड है, देखिए कितना कितना साधन लिए, ग्राइंडर लिए, वो लिए, वो लिए, कपड़ा लिए, स्क्वीजर लिए, इतने सारे करके इतने टाइम में सारे बिगाड़ करके पेड़ से फूल सब सत्यानाश कर दिए, कोई सब खत्म करके इतने कड़वा मुंह में नहीं दे सकते, ये हमारे पारदर्शिता है। और ये एक छोटी सी मक्खी है, कुछ भी नहीं किया, गया और लाया और टेस्ट कर देते, क्यों, क्योंकि वह केवल गुण ही देखता, जिसके पास से रस है उसी के पुल के पास जाएगा, जिसके पास नहीं उसके पास नहीं जाएगा, ये है गुण दृष्टा। और ये दूसरे मक्खी है दोष दृष्टा, वो केवल दोष ढूंढता है और दूसरा गुण ढूंढता है। तो अभी आप लोग के ऊपर है, आप कौन से ग्रुप में बनना चाहते हैं, बीस ग्रुप पे या फ्लाइज ग्रुप में। फ्लाइज ग्रुप का लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट क्या है, दोष ढूंढना, अवगुण ढूंढना, गंदगी में जाना और दूसरे को खराब करना, खराब को देखना, खराब होना, खराब करना। और बीस का क्या प्रोजेक्ट है, किसी के पास जाओ, कितने खराब से खराब कांटेली फूल, कितने अच्छे फूल, किसी के पास जाओ, जाकर उनमें भी गुण को निकालो, बस वो निकालने का तरीका उनको पता है, हमको नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, वो कैसे निकालता है, क्या टेस्ट है, कितने कड़वा कड़वा नीम के फूल के अंदर जाता है और उसके अंदर मधु निकालता है, नीम के फूल से हम सोच भी नहीं सकते, है ना, नीम के फूल से, सरसों के फूल से, यहां से भी मधु निकालता है। ये होता है गुण दृष्टा, जो केवल गुण ही देखना चाहता है सभी के अंदर। तो ये दो प्रकार के ग्रुप जो हैं, आप अपने को जिस ग्रुप में लेंगे इसे बनेंगे, सारग्राही होंगे ना दोषग्राही होंगे, है ना। आप लोगों को भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिए हैं, समझदारी दिए हैं, विचार विवेक शक्ति दिए हैं, तो उनको सीखना चाहिए उनसे, छोटे छोटे प्राणियों से, कि ये भी एक प्राणी है, वो तो कभी गंदगी में नहीं जाते हैं, कभी किससे बुराई दोष नहीं देखते हैं, और उनका जीवन केवल परोपकार में, बेचारे ढूंढ ढूंढ कर लाके इकट्ठा कर रखते हैं, वो थोड़ी खाते हैं, कौन खाता है, हम मधुमस खा रहे हैं, चोरी करके उन्हें मार पीट के भगा देकर हम ले आते हैं, लेकर 10 रुपया किलो बेच देते हैं, वो कंप्लेन ही नहीं करते बेचारे। तो केवल गुण इकट्ठा करना सबसे, और दूसरे को दे देना, कितने बड़ा काम। और हम लोग थाई ग्रुप में केवल गंदगी इकट्ठा करना और गंदगी फैलाना, तो आप लोग किस ग्रुप में बनना चाहते हैं, 20 ग्रुप में पक्का हाँ? तो फिर क्या करना पड़ेगा, बुराई नहीं देखना चाहेंगे तो क्या देखेंगे, गुण देखेंगे। आप बोलेंगे मैं तो गुण देखना चाहते, उसके अंदर गुण थोड़ी है, गुण होता तो मैं देखता है नहीं तो मैं क्या करूं, कैसे देखूं। मैं कुछ दिन पहले एक बेस में गया था, रामकला NIT बेस में, वहां मैंने देखा कि उनका एक नोटिस बोर्ड लगा, आपका तो नोटिस बोर्ड कहीं लगाया नहीं, उनका एक नोटिस बोर्ड देखने लगा, व्हाइट बोर्ड, नोटिस बोर्ड में देखा कुछ लड़के ने हाथ में लिख करके, दो लड़के ने लगा रखे हैं, डेट देकर लगा रखे हैं, वो लोग अपने काम में था, कि मैं जाके पढ़ा उसमें, क्या लिखा, अच्छा लिख करके लगाया, हैंड बैग लिख कर लगाया उसको, छोड़ दिया। जब देखा नीचे उनका नाम लिखा है जिसने लगाया था, ऊपर उसके और किसी और के भक्त का नाम लिखा है, कुछ स्टूडेंट का नाम लिखा है, और एक दो तीन करके आठ गुण, मैंने वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, मुझे ऐसे किए, ऐसे किए, ऐसे कुछ उनके बारे में लिखा, लिख करके सेंड किया। नोटिस बोर्ड इसे क्यों लिख रखा है? तो मैंने फिर वो उन्होंने पूछा, मैंने क्या बात है ना, प्रभु जी ने मुझे बोले हैं, उनका जो इंचार्ज है उनको बोले हैं ऐसा करने में, तो ना वो हमारे रूममेट हैं, हम दोनों से थोड़ा झगड़ा हो गया, हम दोनों से पढ़ता नहीं, झगड़ा हो गया तो प्रभु जी से वो भी कंप्लेन किया, हम ही कंप्लेन की, तो प्रभु जी ने हम दोनों को टैक्स दिए, क्या बोले, आठ दिन तक हर तीन दिन में एक बार, आठ बार उनके आठ आठ गुण निकाल कर मुँह लिखूंगा, वो मेरे नाम में लिखेगा, मैं उनका नाम लिखूंगा, लिख कर नोटिस बोर्ड लगाऊँ सबको। उनको कह रहे हो तो परेशान हो जाते हैं, प्रभु जी कुछ है ही नहीं गुण, तो फिर भी लिखना पड़ता है। जो मेरा चीज शत्रु है, जो हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं हमेशा, उनके अंदर अच्छा गुण मैं कैसे देखूं, मुझे कुछ नहीं देखा, केवल उनका गड़बड़ी देखता मुझे, लेकिन प्रभु जी ने ऐसे टैक्स दे दिए, मैं क्या करूँ, बोले बैठे बैठे दिन भर जाता हूँ, क्या उसका अच्छा गुण है, क्या अच्छा गुण है, मेरे से झगड़ता रहता है हमेशा, ये अच्छा गुण देखूंगा, लेकिन फिर भी मुझे लिखना पड़ता है, कभी मुझे हेल्प नहीं किया, कभी मदद नहीं की, फिर भी उनका अंदर क्या गुण निकाल लूंगी, हैवी टास्क है ना, बोलता है कि मैं कान पकड़ लिया, कभी जिंदगी में कभी भी उनका साथ और झगड़ा नहीं करूंगा, गुण कहां से मिलेगा उसको, बोला बड़ी मुश्किल से इधर से करके लिखा हूं, लेकिन डेली कसम खा रहा हूं उसको, पैर पकड़ो भाई तू मान लेना, प्रभु जी बोल देना हम मित्र हो गए, आओ झगड़ा नहीं करते, बोल दो छूट जाएगा, नहीं तो कहाँ से इतना गुण लाऊं, उसको भी यही हाल, बोलते मेरे भी हाल हो गया, तू बता दो जाके, हम दोनों मिलकर जाके बताते हैं, हो गया अब और गुण ढूंढ नहीं पाएंगे, अब कभी जिंदगी में झगड़ा नहीं करेंगे अपने, है ना। इस प्रकार का ट्रीटमेंट आप लोग भी सुबह करना चाहिए, अगर कोई किसी के प्रति आप इसमें रूम में रहते हैं, केवल उसका बड़ी बड़ी होता है, तुम्हें ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, कुछ नहीं लावा उसके अंदर, सारे ऐसे दोस्त दिखाई पड़ता है तुझे, और ना कुछ नहीं है, आलसी है, सोता रहता है, ये करता नहीं, ये नहीं करता, ये नहीं करता, सकड़ो एक मिनट में सौ बता देंगे, ठीक है क्या क्या अच्छा पॉइंट है, थोड़ा पांच दस निकालो, अच्छा तो कुछ मिलेगा नहीं, आप बाबू त्यास पड़ा कुछ निकालना, तब जाकर जब आप अच्छे देखने के लिए प्रयास करेंगे, सोचेंगे, तब पता चलेगा जी ऐसा भी है, उनको ऐसा सुन रहा था, तब फिर आपका मन से हट जाएगा। तो हम ये गंदे मक्खी की तरह हमेशा केवल यही देखना चाहते, कभी भी ये नहीं सोचते कि किसका अंदर कुछ गुण भी कुछ है, गुण नहीं होता तो दूसरे सैकड़ों हजार लड़के बाहर इधर उधर गलती काम पाप काम करते हैं, रहते हैं इधर खाते हैं, वो बेचारा छोड़कर यहाँ आया क्यों, ये तो एक महान गुण है, कौन ऐसे बात बटकर सुनता है, पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो छोड़कर ये देखना चाहता है, उठ करके चाय पकौड़ा खाते हैं, ये नहीं खाता है, ये खाने के लिए आता है, पैसा दे करके सुबह उठाते इतनी परेशानी में फिर उठकर ये करना चाहता है, कितने गुण देखेंगे, अब गुण तो दिखाई नहीं पड़ेगा, एक बार देखना शुरू करेंगे तो, लेकिन हम खुद देखना चाहें तभी ना। तो इसलिए अगर आप लोग अपने आप को एक महान व्यक्ति बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आज की सुबह से ही संकल्प लीजिए कि अभी हम जो ये 10-11 हैं अपने मित्र, कभी भी किसी के अंदर दोष देखेंगे नहीं, केवल क्या देखेंगे, गुण देखेंगे, अगर नहीं हो फर्क निकालेंगे भंडान कर, मुझे नहीं दिखा पड़ता तो प्रभु जी को पूछेंगे उसका ना कुछ गुण है थोड़ा बताइए, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है ना, केवल आपके अंदर नहीं किसी के भी अंदर नहीं देखना चाहिए, विशेषकर आप लोग का जो आप साथ में रहते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, दो जो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टू यू जो आपके बगल में रहता है, उसके प्रति आपका आचरण कैसे होना चाहिए। मेरा फोन बज रहा है क्या, उसका प्रति आचरण कैसा होना चाहिए, यही सबसे प्रथम कड़ी की शिक्षा होती है, नहीं तो आप आगे क्या पढ़ेंगे? जो आप इतने भी नहीं सीख पाएंगे कि एक मनुष्य के साथ मनुष्य कैसे व्यवहार करना चाहिए। Who is this? अरे बोल बोलो, कहाँ पहुंच गया? अच्छा, आप स्लीपर कोच में गए आपने? ओके, तो आगे चल के क्या आगरा या भरतपुर जयपुर में कहीं हो जाए? प्रसाद वगैरह लिया तुमने कुछ? तो आप क्या चाहते हैं कि आगरा में उतर जाना चाहते हैं आपने? अगर चाहते हैं तो ना तो उतर जाओ, उतर करके वहां मंदिर में जाकर संतान करके भाई बस भी आ सकता है। ठीक है, और उतरेगा तो मुझे ही बताना, उनको भी बता देना फिर। हाँ, क्योंकि सारे सारे टिकट है ना, तो यहाँ से ऐसे ही रहेंगे कि दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें, किस प्रकार दृष्टि से देखें, ये नहीं समझ पाए तो आगे क्या बनेगा? दृष्टि बनेगा है ना? ही करते सब ईर्ष्या द्वेष लड़ाई झगड़ा ही करते रहे। अच्छा बनने के लिए तो यहां से आते हैं, अच्छा बनने के लिए अच्छा गुण को स्वीकार करना चाहिए, एक एक दिन में एक एक प्रयास में होना चाहिए। और सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव प्रभावशाली ये गुण है कि कभी किसी का बुराई ना करे, उनके दोष देखने के लिए प्रयास करें, है ना? नहीं तो आपके आगे चल करके तो कभी बढ़ नहीं सकते हैं, किसी के साथ दोस्ती भी नहीं हो सकती, केवल बिगड़ सकते। बोली में इतनी ही ताकत है जो किसी व्यक्ति को मित्र बना सकता है और किसी को भी शत्रु बना सकता है। तो इसलिए बड़े बड़े आचार्य लोग कहते हैं, सबसे पहले अगर हम कुछ भी बनना चाहते हैं अपनी जीव भाव वेग को प्रतिनिधित्व करना चाहिए, है ना? और तभी हो पाएगा जब किसका हम दोष देखने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, फिर गुण देखेंगे। महात्मा गांधी का एक शिक्षा में आता, तीन बंदर रखते हैं, कैसे बैठते हैं? ऐसे, वैसे और ऐसे। इसका मतलब क्या है? वो देखिए, बंदर को कार्टून बनाकर करते हैं, हम लोग को व्यक्ति हम नहीं करेंगे, कल बोलते रहेंगे उसको, है ना? अगर आप भी महान बनना चाहते हैं, बुरा चीज देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो ही मत, तब तो जाकर कुछ अच्छा बने, है ना? हम इधर सात आठ रहे, आपस में अपना रिलेशन अच्छा नहीं है तो दूसरे को क्या बताएंगे? एक आदर्श है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आप अकेले से जाएंगे प्रचार करने के लिए, समझाने के लिए भगवान के बारे में, आपको एक मचिस जलाते ना, एक क्या बोलते हैं, स्टिक बोलते हैं, एक स्टिक देंगे, तिल्ली है, तिल्ली देंगे आप, दो अंगूठी में से पट कर तोड़ देंगे, मैं एक साथ में 20 एक बंडल कर दूंगा, उसको तोड़ सकते हैं आपने? क्यों? अकेले होने से तोड़ देते हैं, जब साथ में ग्रुप रहते हैं तो नहीं तोड़ सकते। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इस प्रकार आप सभी भगवान के शरण में आए हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, सभी का प्रयास एक ही है, सबके लक्ष्य एक ही है, सभी अपने संस्था के अंतर्गत होना चाहते हैं कि अपने के चरित्र को सुधारें, अपने को अच्छे बनाएं, तो सब चाहते हैं तो फिर आपस में क्यों लड़ झगड़े में, सब मिल करके अच्छा बनना चाहेंगे तो द्रुत प्रगति है। कोई किस्सा कमी रह जाता है वो मेकअप हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो कमी है ना, जिसके अंदर जो कमी है वो भी मेकअप हो जाएगा, उससे जाकर उसको उससे एडजस्टमेंट हो जाएगा पक्का, अलग अलग रहने से कुछ नहीं। तो इसलिए एक धागा होता है, रस्सी रस्सी को है तो धागा, छोटे छोटे पतला पतला धागा होता है, तो 100-200 धागा एक साथ में रैप होकर होता तो सख्त रोक बन जाता, रस्सी बनता है, बड़े बड़े ट्रक आदि को खींच लेता है, लेकिन एक एक धागा से कई धागा मिलकर होता है ना, तो इस प्रकार आप एक 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 से मिल करके आपका गोवर्धन बेस इतने सलीड बन जाएगा, अगर यूनिट रहेंगे वो इकट्ठा रहेंगे मिलकर रहेंगे तो आप कुटा को ही बदल सकते हैं सूर्य, लेकिन आप आपस में नहीं मिलेंगे, आप अपने को ही नहीं बदल सकते, दूसरे क्या बदलाएंगे, दूसरे को सुधारने का आप ही खुद सुधर नहीं सकते, दूसरे क्या सुधारेंगे। तो इसलिए आपका ये जो आप अपने देश में रह करके भक्ति करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक मूल अभ्यास आप बिल्कुल रसम ले करके संकल्प लेकर कीजिए कि कैसे आपस में हम यूनिटी मिल करके रहें, हमेशा एक दूसरे का गुण देखें, दोष ना देखें, गुण देखने से उनको हेल्प करने के लिए कहेगा, आप एक मन कर रहेंगे, आप एक मन कर रहेंगे निर्दोष होकर के, तब तो धीरे धीरे जो आएंगे उनको भी यही सिखाएंगे, जोड़ जोड़ करके इतने सख्त हो जाएंगे कोई टूट ना सके, फिर तो किसी को भी आप जीत सकते ना। तो इस चीज़ को आप अमल कीजिए, प्रयास कीजिए आपस में मिलजुल कर रहने के लिए, कभी किसी का कोई दोस्त टूटी रह भी जाता है तो उसको समाधान करके मेकअप करके उनके अंदर गुण देखो तो वो भी खुश हो जाएगा, बोला देखो मैं इतने बदमाश हूँ लेकिन वो लोग मुझे अच्छा बोलते हैं। एक सत्य घटना हुआ था एक बार, बहुत पहले की बात है, आप पंचवटी जो गोदावरी के पास जानते ना नासिक में, सुने हो पंचवटी जहाँ राम जी का मंदिर है, जहाँ सुपर्णखा आई थी और रावण ने सीता हरण की थी, वहाँ बहुत प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर है, गोदावरी नदी के उत्पत्ति स्थली है, तो वहाँ पर बड़े बड़े महात्मा लोग राम भक्त से रह करके साधन भजन करते हैं, तो पहाड़ के ऊपर है पंचवटी, गोदावरी तो बहुत नीचे, कम से कम 150-200 स्टेप जाना पड़ेगा नीचे, तो गोदावरी पानी में जाकर नहाने और ऊपर चढ़ के आना पड़ता है राम मंदिर में, तो महात्मा लोग ऊपर में रहते हैं पंचवटी पास, वो डेली गोदावरी स्नान करना तो जाते हैं उनका, डेली गोदावरी स्नान करेंगे पवित्र पानी, गोदावरी में स्नान करने के लिए 200 से ज़्यादा स्टेप उतर के जाना पड़ता है, बेचारे जाके स्नान करके लेफ्ट पानी लेकर आते। तो एक महात्मा थे, उनका बस सुबह उठ करके जाते थे स्नान करने में, वृद्ध हो चुके थे तो जल्दी उठ नहीं पाते थे, फिर भी 5:30 बजे उठ करके और जाते थे स्नान करने के लिए आते थे। तो यहाँ जो स्टेप के बाजू में से कई दुकानदार बैठा रखे हैं, चाय वाले पान वाले, ऐसे दुकान होते हैं ना, लोग जाते हैं बहुत भीड़ स्नान करने के लिए, सब अपना दुकान बना रखे। तो एक दुकानदार था ऐसे पान चाय बेचने वाले, वो आप जैसा ही चंगड़ा यंग लड़का था, लड़का तो हमेशा दूसरे देखने से चिढ़ाते हैं, क्योंकि साइज करते हैं दोस्त देखते हैं, और देखा है बाबा जी जाता है, उसको बोला है सुबह सुबह जा कर जाता है, कुछ नहीं चाय ना चाय भी नहीं पीता, पान भी नहीं खाता, कुछ नहीं करता, राम राम करते जाता है नहाने के लिए, गाड़ी दिया जाने के लिए। वो फिर गया बेचारा बूढ़ा स्नान करके पान लेकर आया था, अपने मंत्र आराम सीताराम सीताराम करते करते महामंत्र जपते हुए आ रहा था, तो उसको देखा मैंने बड़ा पवित्र दिखाते हैं आता है, वो आपने ये खा रहा था चुभ दिया, और देखते हैं बुढ़ा क्या कर रहे, बदमाश है लड़के, सब बैठ के थूक दिया उसके ऊपर, उसका हाथ में पड़ा और पानी भी गिरा, तो उन्होंने देखे बाबा जी ने थूक क्या करेंगे, पानी फेंक दिए, हाथ में शरीर में पड़ा है, उनसे वापस गए, फिर इतने स्टेप गए जाके फिर बेचारा स्नान के डुप ले आता है, तो उनका दोस्त उठ लिखे बुढ़ा तो कुछ नहीं बोला, फिर गया स्नान करने के लिए, और देखते हैं पानी तो मैं इस बार तो आया, वो दूसरा थूक दिया, फिर गए वापस जाके स्नान करके आए, तो फिर दूसरा जो बैठा था बोला इस घर में तुम। तो ऐसे ऐसे 500 बार उनको दोपहर से ऊपर हो गया, बेचारा खाए नहीं पीने, बार बार जाते हैं स्नान करके आते हैं फिर वापस जाते हैं, एक बार ऊपर में बैठे फिर इसने सीढ़ी नीचे जाना फिर आना, पूरा उनका हेवी टास्क हो गया उस दिन। इतने बार करने के बाद उनके मुंह से थूक भी नहीं निकल सकता, अभी इतनी बार थूके लेकिन कुछ बोलता भी नहीं जाता है बार बार। तो दोनों लड़के उनका अंदर जो बदगुण था सारे खत्म हो गया। 51 के बार जब आए बोले ये तो सही में गजब का आदमी है, सुबह से लेकर के अभी 4 बज चुका है वो जाता है स्नान करके आता है, हमको गाली भी नहीं देता, किसी को कंप्लेन नहीं करता कि भाई मेरे से परेशान कर रहे हैं करके। काइंड ऑफ पर्सन इज किसी व्यक्ति है, ये व्यक्ति है या आपके देवता है। तो आ करके दोनों पैर पकड़ पड़ गए उनके, हद हो गया उनका, जितनी बदमाशी करना था कुछ नहीं फर्क पड़ा, उनको पैर पकड़ लिए उनको पढ़ करके रोने लगे गिड़गिड़ाने लगे, बाबा जी हम तो आपको परेशान करते करते पूरा दिन भर हमारा भी बीत गया, दुकान धंधा खत्म करके आपके पीछे पड़े लेकिन आप कुछ नहीं बिगड़ पाया। वहां तो बोले आप चाहे हो, आप लोग दोनों की कृपा से मेरा आज 50 बार गोदावरी स्नान हुआ, नहीं तो एक बार मिल जाता, मेरा तो इतने बड़े अजीब पुण्य उदय हुआ कि एक दिन में 500 गोदावरी स्नान, क्या कम बात है। तो आप दोनों नहीं होते तो मैं कैसे कर पाता, आप दोनों के मैं आपसे बड़ी चीर ऋणी हूं, आप दोनों की मदद से मेरा हुआ, आप अगर मुझे इसे तंग ना करते मैं फिर गोदावरी एक बार स्नान करते वाला। उनका तो वो आकर के जो क्षमा मांगे उनके दोष नहीं देखा, उल्टी उनके गुण देखा कि आप कैसे गुण के कारण में गोदावरी स्नान कर पाया। ऐसे व्यवहार में उन दोनों तो उसी समय से बिल्कुल बदल, ऐसे ऑपरेशन हुआ उनका हार्ट के अंदर बिना एनेस्थेसिया में बिना टच में कुछ स्पर्श के बिना ऐसे ही बदल गए कि जिंदगी में कभी किसी को उन्होंने और तंग नहीं करेंगे। देखिए केवल अपना व्यवहार से ऐसे अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो आप भी सुधरेंगे दूसरे को भी सुधार सकते है ना। अगर दोस्त देखते रहेंगे डांडे को नहीं कभी नहीं सकते। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है आप लोग का? परीक्षा तो ही होना चाहिए, यहाँ तो शिकायत के अंदर यहाँ पर परीक्षा तो असली पहचान वही होना चाहिए तो वहाँ पे आप कर पाते हैं प्रैक्टिस देर होने यहाँ तो रिहर्सल करेंगे स्टेज तो हो यहाँ आपस में रिहर्सल करो पंडालों में वहाँ उठना चाहिए का भी अपना यूटिलिटी है, अपना यूज है, जिस स्थान पर उसको यूज करना चाहिए जिस समय में उसको यूज करो, दूसरी जगह मत करो। कहा गया क्रोध भक्त द्वेषी जने, कोई भक्तों को तंग देता है कष्ट आप देखे तो उसको डांट दे पड़ा अगर सत्य हो थोड़ा क्रोध देखा हो इस जगह पर बाकी जाए। ओके अच्छा लगा आप लोग को, बुरा तो नहीं लगा ना? अभी बुरा लगे नहीं बोलेंगे आपने अभी अच्छा बोलना ही पड़ेगा इसलिए नहीं आज आपका कॉलेज जाने का टाइम है सब आज छुट्टी सेकंड सैटरडे तो ठीक है अभी एक्स्ट्रा टाइम जब कीजिए फिर सेकंड टाइम अगर आपका टाइम है तो फिर थोड़ा बैठेंगे डिस्कस करें है ना अगर आपका माला कुछ बाकी है ना नहीं तो बाकी रह जाएगा पूरा कर लीजिए प्रसाद हाँ जी जैसे कोई दवाई है कोई बीमारी के लिए वो हमेशा कड़वा होता है तो खाने के लिए मन नहीं करता अच्छा नहीं लगता लेकिन अगर नहीं खाएंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगा तो अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि बीमारी है अगर अच्छे होते तो अच्छा लगता जैसे किसी को पीलिया बीमारी जानते हैं ना पीलिया बीमारी होता है तो आप रसगुल्ला भी खाओ करने के जूस वूस हर मीठा चीज कड़वा लगे कड़वा लगता ना तो क्या मीठा चीज़ को कड़वा हो गया क्या नहीं आपके जीवा के दोष इसी वजह से कड़वा लगता है क्योंकि इसमें बीमारी है तो बीमारी की अगर छूट जाएगा तो मीठा लगेगा है ना वो जो नाम इतने सुंदर हैं मधुर हैं तो हमको कड़वा लगता है क्योंकि हम बीमार हैं जंडिस पकड़ा हुआ है हैवी डोज जंडिस पकड़ा हाई जंडिस जैसे जैसे उसी को ले लेकर धीरे धीरे कमती जाएगा तो फिर उसका मतलब पता सर है जो नए नए आएंगे उनका तो मन कभी लगेगा ही नहीं घोर जंडिस में पड़ेगी किसे लगेगा आ चूचा करके एक दो बार ले लेंगे लेकिन अगर विश्वास करे दवाई को लेते रहेंगे आप तो धीरे 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 सुधार हो जाएगा ओके आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद
महाराज जी
ये वो क्या रिकॉर्डिंग इसमें वो जैसे बंद करे क्या हरे कृष्णा ये रिकॉर्डिंग हो गया वो से दबेगा
रिकॉर्डर उनको बोल दो ना बंद कर तो ये क्या आप इनको बंद कर लो
डरता है
भाई कोई डिलीट हो गया
क्या है
बज में जाते हैं मतलब गर्स